नमस्कार भारत, तारीख 28 अप्रैल दिन गुरुवार, आपके साथ मैं अशोक कुमार। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की अपनी विदेश नीति, कहा सबसे पहले अमेरिका, आईएस को भी दी चुनौती।
एंड देन देयर इज आईएसआईएस, आई हैव अ सिंपल मैसेज फॉर देम, देयर डेज आर नंबर्ड, आई वोंट टेल देम वेयर।
उत्तराखंड के बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई।
अगर हमारे पक्ष में फैसला है तो हम उतावले नहीं होने वाले, कोई पटाखे नहीं फोड़ने वाले, और अगर हमारे खिलाफ आए तो हम मायूस होने वाले नहीं, क्योंकि हमें देश की पूरी न्याय प्रक्रिया पर, न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा है।
बताएंगे क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं जेएनयू छात्र संघ के नेता, और होंगी खबरें खेल की भी, लेकिन सबसे पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में काफी आगे निकल चुके हैं। 5 राज्यों में ताजा सफलता के बाद ट्रंप ने वॉशिंगटन में एक भाषण के दौरान खुद को पार्टी का संभावित उम्मीदवार घोषित किया और अपनी विदेश नीति को विस्तार से लोगों के सामने रखा। ट्रंप ने अमरीका के विदेश नीति में कई बदलावों की बात कही है। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी टेड क्रूज ने कहा है कि अगर उन्हें उम्मीदवार चुना जाता है तो कार्ली फियोरिना उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जाएंगी। टेड क्रूज ने इंडियाना में कहा,
After a great deal of consideration and prayer, I have come to the conclusion that if I am nominated to be president,
काफी सोच विचार और प्रार्थनाओं के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकित होता हूं तो कार्ली फियोरिना को उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट दूंगा। ये थे टेड क्रूज के शब्द। कार्ली फियोरिना फरवरी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस से बाहर हो गई थी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के अलप्पो शहर से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक सरकार समर्थित सुरक्षा बलों के हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। ये हमले अस्पताल और आसपास के इमारतों पर किए गए थे। नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ताओं ने फ्रांसिस समाचार एजेंसी के मुताबिक अलप्पो में हमले में मरने वालों में बच्चे और शहर में मौजूद एक बच्चों के डॉक्टर भी शामिल हैं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश अब भी जारी है। इराकी सरकार ने अल जजीरा चैनल से बगदाद में अपना ब्यूरो बंद करने को कहा है। अल जजीरा समूह के पत्रकारों को इराक से रिपोर्टें भेजने पर भी रोक लगा दी गई है। अल जजीरा पर इराक में प्रसारण संबंधी दिशा निर्देश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इराक में विद्रोही गुटों के बारे में रिपोर्टें करने पर रोक है और अल जजीरा ने किसी भी तरह के दिशा निर्देश के उल्लंघन से इनकार किया है। यूक्रेन और रूस के बीच मिलोवो सीमा पर तनाव की खबरें हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेन की पायलट नाडिया सावाचेंको की बहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। यूक्रेन की पायलट नाडिया सावाचेंको को रूस में 20 साल की सजा सुनाई गई है। उनकी बहन को सीमा के पास दूतावास की एक गाड़ी में रखा गया है। उनके साथ दूतावास के एक अधिकारी भी मौजूद हैं। सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टाफन डी मिस्टूरा ने अमरीका और रूस से सीरियाई शांति वार्ता को बचाने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरियाई शांति वार्ता के बारे में जानकारी देने के बाद उन्होंने कहा कि सीरिया में युद्धविराम बहुत नाजुक स्थिति में है और कभी भी टूट सकता है। उन्होंने मई में शांति वार्ता के दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की हिंदी सेवा से पहली सेवा नमस्कार भारत, रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव, और आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमेरिका से और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उनके विरोधी जितना उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की रेस में उतनी ही तेजी से दौड़े जा रहे हैं। मंगलवार को 5 राज्यों में हुए प्राइमरी चुनाव जीतकर उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों की उम्मीदों पर पानी फेरने की भरपूर कोशिश की। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी में उन्हें रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसी खींचतान के बीच कल रिपब्लिकन ट्रंप ने पहली बार अपनी विदेश नीति पेश की। उन्होंने जहां राष्ट्रपति ओबामा पर जमकर वार किया, वहीं इस्लामिक स्टेट को चुनौती देते हुए कहा कि अब उसके दिन गिनती के बचे हैं। ट्रंप ने अमेरिका के कुछ नज़दीकी सहयोगियों को भी ये कहकर झटका दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका मुफ्त में उनकी रक्षा नहीं करेगा, यानी इसके लिए पैसा देना होगा। लेकिन एक बात जिस पर उनका बराबर फोकस था वो थी अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका को पहले रखने की नीति। सब आइए सुनते हैं बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा हरिता कांडपाल से।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। 5 राज्यों में सफलता हासिल करने के बाद ट्रंप ने अपनी विदेश नीति पर पहली बार खुलकर बात की। ट्रंप ने कहा कि वो सबसे पहले अमेरिका की नीति को प्राथमिकता देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
इट्स टाइम टू शेक द रस्ट ऑफ अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी। It's time to invite new voices.
अब विदेश नीति पर जमी जंग को हटाने का वक्त आ गया है। अब वक्त है कि नई आवाजों और नए दृष्टिकोण को भी सुना जाए। मेरी विदेश नीति में अमरीकी लोगों के हित और अमरीका की सुरक्षा सबसे ऊपर रहेगी। इसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरे हर फैसले की नींव यही होगी। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा पर भी निशाना साधा और कहा कि ओबामा की विदेश नीति पूरी तरह बर्बाद है। तो व्हाइट हाउस से भी इसका जवाब आ गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने कहा,
आई थिंक व्हेन इट कम्स टू दिस प्रेसिडेंट्स फॉरेन पॉलिसी देयर इज नो डिनाइंग।
राष्ट्रपति की विदेश नीति की बात आती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीका अब 2009 से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है जब राष्ट्रपति ओबामा ने पद ग्रहण किया था। जॉश अर्नेस्ट के शब्द। ट्रंप ने जहां एक ओर चीन और रूस से रिश्ते सुधारने की बात कही, वहीं सहयोगी देशों की तरफ रवैये में बदलाव लाने की बात भी कह दी। ट्रंप ने कहा कि जिन देशों की रक्षा अमेरिका करता है उन्हें इसके लिए अमेरिका को भुगतान करना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो वो अपनी सुरक्षा खुद करें। तो खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी संगठन को भी डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब आईएस के दिन गिने चुने हैं। इसके अलावा ट्रंप ने कट्टर इस्लाम पर लगाम कसने पर भी जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
And then there's ISIS. I have a simple message for them.
मैं ISIS को संदेश देना चाहता हूं कि अब उनके दिन गिने चुने रह गए हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां और कब। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। हाल ही में पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, डेलावेयर, रोड आइलैंड और मैरीलैंड में प्राइमरी में सफलता हासिल करने के बाद ट्रंप ने खुद को रिपब्लिकन पार्टी का संभावित उम्मीदवार बताया है।
ये थी हरिता कांडपाल, आपको सुना रही थी बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जिस तरह के बयान दिए हैं उन्हें देखते हुए उनकी विदेश नीति पर सबकी नजरें टिकी थी। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। तो ब्रजेश जी, जिस तरह ट्रंप अब से पहले मेक्सिको की सीमा पर कभी दीवार लगाने की बात करते थे तो कभी अमेरिका में मुसलमानों के आने पर रोक लगाने की बात, वो ये भी कहते थे कि सद्दाम होते तो इराक बेहतर होता, गद्दाफी होते तो लीबिया बेहतर होता, अब उन्होंने अपनी विदेश नीति पेश की है, किस तरह देखा जा रहा है अमरीका में इसे?
देखिये, पहली बात तो ये कही जा रही है कि कल 5 राज्यों में जब जबरदस्त जीत जो उन्हें मिली उसके बाद वो खुद को रिपब्लिकन पार्टी के चुने हुए उम्मीदवार की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये भाषण ये दिखाने के लिए था कि जो उनके पास, जिसे अमेरिका में हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल काबिलियत या राष्ट्रपति पद के अनुरूप गरिमा, वो है, क्योंकि उनकी आलोचना इस बात के लिए होती रही है। दूसरी बात, अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन बनती है, जिसके पूरे आसार अब नजर आ रहे हैं, तो ट्रंप विदेश नीति की बात करके उन पर हमला कर रहे थे, क्योंकि हिलरी क्लिंटन की का सबसे मजबूत पॉइंट विदेश नीति है। और तीसरी बात जो सबसे अहम है कि कल के प्राइमरी चुनावों के बाद भी खबरों में वो बने रहे, टीवी पर सिर्फ उनकी चर्चा हो, इसकी बहुत जरूरत थी है उन्हें, तो इसके लिए उन्होंने विदेश नीति की पॉलिसी पर स्पीच देना आज ही जरूरी समझा। विदेश नीति के जो जानकार हैं उनकी माने तो ठोस इसमें कुछ भी नहीं था, सब कुछ सतही था, लेकिन रिपब्लिकन वोटर्स, खासतौर से ट्रंप के जो समर्थक हैं, उनको कई बातें बहुत अच्छी लगी है, खासतौर से अमेरिका फर्स्ट, आईसिस को खत्म करने की बात, चीन और रूस के साथ कैसे वो बर्ताव करेंगे, तो इसका उन्हें फायदा हो सकता है।
जी, ट्रंप तो अब जैसा आपने कहा कि खुद को अभी से उम्मीदवार मानने लगे हैं, लेकिन उन्हें रोकने की लगातार कोशिशें, जो खेमा कर रहा है टेड क्रूज का खेमा, उन्होंने कल एक कारोबारी कार्ली फ्योरिना, उनको अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है अगर उन्हें उम्मीदवारी मिली। टेड क्रूज भले बहुत पीछे हैं अभी उनसे, ट्रंप से, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या गणित है उनका?
देखिए टेड क्रूज की ये आखिरी कोशिश है क्योंकि अगले हफ्ते इंडियाना में चुनाव है और वो करो या मरो की नौबत है उनके लिए। और उनकी यही कोशिश थी कि कल पांच राज्यों में इतनी बुरी तरह उन्हें हार मिली है कि वो खबरों में केवल ट्रंप की बात हो रही है तो किसी तरह वो टीवी चैनल्स पर उनकी भी बात हो जिसका उन्हें फायदा हो। और इस वक्त अपने उपराष्ट्रपति का ऐलान करके उन्होंने एक तो मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश की और दूसरे ट्रंप पर हमला तेज करने के लिए एक ऐसे उम्मीदवार का ऐलान किया जो महिला वोटरों को अपनी तरफ खींच सके। और इसके अलावा कार्ली फियोरेना और ट्रंप के बीच पहले भी तीखी बयानबाजी हो चुकी है जब कार्ली फियोरेना खुद भी उम्मीदवारी की रेस में थी और वहां वो ट्रंप को चुप कराने में कामयाब रही। लेकिन यहाँ के जो जानकार हैं उनकी माने तो टेड क्रूज का ये कदम उस स्कूली छात्र की तरह है जो परीक्षा से बचने के लिए आखिरी दिन फायर अलार्म बजा देता है जिससे कि परीक्षा टल सके, लेकिन उससे आखिरकार उसकी वो बच नहीं पाएगा क्योंकि एग्जाम तो होगा ही।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय। और अब रुख करते हैं भारत का। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट का फिलहाल कोई हल निकलता नहीं नजर आ रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाकर अब मामले की सुनवाई 3 मई तक के लिए टाल दी है। वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये विधायक अपनी सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं और इन सब के बीच राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
18 मार्च को उत्तराखंड की विधानसभा से शुरू हुआ राजनीतिक बवंडर अब अदालती पेचीदगियों में उलझ गया है। राज्य के सियासी गलियारों में इतनी आवाजें, इतनी बहसें, इतनी तानाकशी और इतने विवाद कभी नहीं देखने सुनने को मिले थे जो साल 2016 के मार्च और अप्रैल के इन 41 दिनों में सामने आए हैं। राजनीतिक दलों ने जैसे अपनी लड़ाई का एक फ्रंट ही कोर्ट परिसर को बना लिया है, फिर वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, हर पक्ष न्याय प्रक्रिया पर भरोसा जता रहा है और फैसले का इंतजार कर रहा है। अब उन 9 कांग्रेसी बागियों को ही लीजिए जिनकी एक याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है जबकि डबल बेंच इन बागियों की सदस्यता संवैधानिक पाप कहकर खारिज कर चुकी है। कांग्रेस के बागी नेता हरक सिंह रावत,
अगर हमारे पक्ष में फैसला है तो हम उतावले नहीं होने वाले, कोई पटाखे नहीं फोड़ने वाले, कोई जश्न नहीं मनाने वाले, और अगर हमारे खिलाफ आए तो हम मायूस होने वाले नहीं, क्योंकि हमें देश की पूरी न्याय प्रक्रिया पर, न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा है।
उधर निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के आदेश का पालन करने की बात कही है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर अमल किया जाएगा लेकिन वो बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूके। इस समय दरअसल बीजेपी को राष्ट्रपति शासन के लिए नैतिक रूप से जवाबदेह बनाए रखना ही रावत की राजनीति और जनता की सहानुभूति हासिल करने का एक सशक्त औजार बना हुआ है। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी उनके साथियों के खिलाफ जांच का डर दिखा रही है और पाला बदल का दबाव बना रही है।
जिस तरीके से भाजपा धमकी दे रही है, कहा जा रहा है कि मंत्रियों की संपत्ति की जांच करेंगे, मैं कह रहा हूँ मंत्रियों की क्यों करती हो, जो मंत्रियों का मंत्री हरीश रावत उसकी संपत्ति की जांच करो। और वर्ष 2014 से 2016 तक जितने दिन मैं मुख्यमंत्री रहा मेरी सारी प्रॉपर्टी यदि पहले की भी करना चाहते हो तो दैट इज मोस्ट वेलकम।
बीजेपी ने हरीश रावत के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हीं पर आरोप लगाया कि सत्ता के प्रति अपनी बेकरारी दिखाते हुए डराने का काम रावत खुद कर रहे हैं। बीजेपी ने विधायकों के खरीद फरोख्त पर रावत के आरोपों पर उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अजय भट्ट,
तो हमारे वहां से न तो कोई डरा रहा है न धमका रहा है, ये सब चाल है। जैसे उन्होंने पहले कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, भाजपा के लोग विधायकों को खरीद रहे हैं और खरीदने पर अपने आप लग गए, पकड़े भी गए, उसमें स्टिंग ऑपरेशन हो गया।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगे 1 महीना हो चुका है, बीच में 24 घंटे का ब्रेक हाईकोर्ट के सरकार की बहाली के आदेश से आ गया था लेकिन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के स्टे ने वापस राष्ट्रपति शासन को बहाल कर दिया। इस तरह तारीख दर तारीख उत्तराखंड की राजनीति एक नए पसोपेश और नई विडंबनाओं के हवाले होती जा रही है और लोग हैरान परेशान हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आए, 2017 के चुनावों की एक तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है और लाभ उसे ही मिलेगा जो जनता के बीच ज्यादा बेहतर ढंग से ये बता पाएगा कि राष्ट्रपति शासन गलत था या सही, इसकी जरूरत या नौबत क्यों और किसकी वजह से आई और इससे कितना नुकसान या लाभ राज्य को हुआ। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
जिस तरह से उत्तराखंड लगातार सुर्खियों में है, उसी तरह दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू और उसके छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार खबरों में बने हुए हैं। ताज़ा खबर कल रात शुरू हुई जेएनयू छात्र संघ के नेताओं की भूख हड़ताल है, जिसमें वो 9 फरवरी की घटना को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट में 21 छात्रों को दोषी करार दिया गया है और कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जिन अन्य छात्रों पर जुर्माना लगा है उनमें से एक जेएनयू छात्र संघ के सचिव रामा नागा भी हैं, जिनसे बात की हमारे साथी मोहनलाल शर्मा ने और पूछा कि भूख हड़ताल कब तक चलेगी।
भूख हड़ताल इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक है, अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल होगा और ये जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का डिसीजन आया हुआ है उसके खिलाफ ये भूख हड़ताल है। सारे जो स्टूडेंट को चार्जेस लगाए गए हैं उनके खिलाफ डिसीजन लिया गया है, उसको खारिज करने के लिए इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक।
लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है ये कमेटी ठीक नहीं है, तो भाई एक कमेटी जो जांच कर रही है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है?
कमेटी को ही हम लोग ठीक नहीं बोलते हैं, कमेटी की रिपोर्ट को भी हम लोग ठीक नहीं बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही जिस तरीके से कमेटी का इंक्वायरी प्रोसेस रहा, हम लोगों का कंसर्न था कि ये कमेटी जो है फॉर्म की गई है 3 मेंबर, एक प्रोक्टोरियल बोर्ड को प्रोक्टोरियल इंक्वायरी को बाईपास करते हुए फॉर्म की गई और कमेटी जब फॉर्म हुई मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर 8 स्टूडेंट को ये लोग डिबार कर देते हैं कमेटी के द्वारा, बोला गया कि ये लोग दोषी पाए गए हैं। लेकिन जब कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आता है इसमें से स्टूडेंट का नाम भी नहीं होता है जिनको डिबार किया गया था, ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कमेटी के जो मेंबर हैं उनको लेकर के हमारा बहुत कंफ्यूजन था। कमेटी के हेड जो है राकेश भटनागर, उनका इतिहास जेएनयू में रहा है, वो एक परिकल्ट के मेंबर रहे हैं, एंटी रिजर्व से उनका स्टैंड है, इसीलिए जब स्टूडेंट जिन स्टूडेंट के एगेंस्ट में ये डिसीजन ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट एससी हैं माइनॉरिटी हैं, तो इसीलिए हमारा कंसर्न था इस तरह का एक व्यक्ति को कमेटी का हेड ना बनाया जाए।
रामा साहब, सवाल ये है कि ऐसा कहीं थोड़ी होता है कि मतलब जज भी आप अपने मामले का तय कर देंगे और ये कहेंगे कि फैसला भी मेरे लिए ही दो, मेरे खिलाफ क्यों दे रहे हो, ये ऐसा कहां होता है?
जज हम लोग बना नहीं रहे हैं, जब जेएनयू का एक इंटरनल मैकेनिज्म है और ये पहली बार नहीं हुआ है, जेएनयू में तमाम सारी कमेटियां गठित होती है जिसमें स्टूडेंट यूनियन को भी खुद रखा जाता है।
नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस कमेटी ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दिया जो कन्हैया हैं और अनिर्बान हैं, अगर ये आपके पक्ष में दे देते तो आंदोलन आप नहीं करते, तब यही कमेटी की जो मान्यता है ये आप इसे स्वीकार कर लेते?
कमेटी का डिसीजन हमारे पक्ष में आएगा ये कभी हमारी उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग जानते थे जब एक भी वर्ड हमारे बिना सुने ये लोग डिसीजन हम लोग को स्टूडेंट को दीवार कर दिए तो क्या ही हम लोग कमेटी को जस्टिस को उम्मीद करते। कमेटी का कोई भी मैंने डिसीजन आता, आज 10-20 हजार लगाया गया है फाइन, एक भी रुपया लगाया था तो हम लोग उसको नहीं मानते, क्योंकि ये जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन कमेटी को और कमेटी के जो इंक्वायरी है उसको नहीं मानती है।
कौन सा डिसीजन आप नहीं मानते? क्या कन्हैया पर 10,000 रुपए का फाइन नहीं मानते या बाकी फैसले भी?
किसी भी स्टूडेंट को 1 रुपया का फाइन, हॉस्टल से निकालना, जेएनयू से रेस्ट्रिक्ट करना, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। जब तक ये सारे चार्जेस वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगा, ये हमारा फैसला है।
ये थे जेएनयू छात्र संघ के सचिव रामा नागा, जिनसे बात कर रहे थे हमारे साथी मोहनलाल शर्मा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
देश के जिन 5 राज्यों में आजकल चुनावी गहमा गहमी है उनमें पश्चिम बंगाल पर खास तौर से नजरें हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि वहां उभरने वाले नए सियासी समीकरण, तो दूसरी वजह है वहां चुनावी हिंसा का तीत, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक अहम चुनौती है। मगर इन सब के बीच बंगाल को अपनी संस्कृति और लोकगीतों के लिए भी जाना जाता है। अपने लोकगीतों से जुड़ाव यहाँ के लोगों को चुनावी तलखियों से भी राहत पहुंचाने का काम करता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव कवर करने गए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने चुनावी माहौल के बीच भेजी है अपनी ये डायरी।
वैसे तो पश्चिम बंगाल में बैलगाड़ियों का चलन अब बहुत कम ही रह गया है, मगर कुछ ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां आज भी ये तालाब और नदी किनारे की कच्ची सड़क पर फर्राटे भरती हुई चलती है।
दोनों नदी ठाकुर जामा ये लो बड़ी थे।
24 परगना में बैलगाड़ी का सफर और लोक गीत की जुगलबंदी मानो माहौल में रोमांच भर देती है।
लोकेर बेटी लो लंबा लंबा चूल मन माथा बंधे दुबो लाल गेंदा फूल।
मौका है पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा के चुनाव का और चुनावी शोर शराबे से हटकर सूबे की पारंपरिक लोक गीतों की धुन मन को ठंडक पहुंचाने का काम करती है। सीटों के एतबार से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव करवाना और लड़ना दोनों ही काम चुनौतीपूर्ण है। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल और 24 परगना के इलाकों में अलग अलग मुद्दे हैं और संस्कृति भी कुछ अलग अलग सी है।
গণপতি এই মিনতি জানাইয়া তোমার কাছে।
মগর ইন সব কে বাবজুদ রাজনৈতিক দলো কে বীচ 294 সিটো কে লিয়ে সংঘর্ষ জারি হ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস দূসরে কার্যকাল কে লিয়ে এড়ি চোটি কা জোর লগায়ে হুয়ে হ্যায়। সবসে মজেদার সংঘর্ষ ভবানীপুর সিট পর হ্যায় জহাঁ দিদি বৌদি और दादा आमने सामने हैं। दीदी यानी ममता बनर्जी, बौदी यानी कांग्रेस और बाम मोर्चे की साझा उम्मीदवार दीपा दास मुंशी और दादा यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्र बोस। चंद्र बोस कहते हैं कि उनकी लड़ाई ममता बनर्जी से ही है।
ये सरकार के तारा आर निर्वाचित होते चाहिए किंतु किंतु सेटी शुद्ध नामेर परिवर्तन।
चंद्र बोस कह रहे थे अब लोग सही मायने में परिवर्तन चाहते हैं और इनके पास अब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विकल्प है। मगर तृणमूल कांग्रेस के नेता अमिताभ मजुमदार कहते हैं
ममता बनर्जी विशाल वोटर व्यवधान जयी होंगे।
अमिताभ मजुमदार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस के नेता तरुण देव का दावा है कि दीपा दास मुंशी ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दे रही हैं।
तो बंगाल में 294 जो सीट है एक नंबर सीट ये है या हम लोग का साथ फाइट हो रहा है इधर का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का साथ। तो दीपा दास मुंशी को सोनिया गांधी ने भेजा है इधर लड़ने के लिए।
भवानीपुर में ममता बनर्जी का पुराना घर भी है जहां वो कई सालों से रहती आ रही हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने सरकारी आवास में रहना पसंद नहीं किया मगर अब उनके घर की गलियों पर कड़ा पहरा है।
फिर भी ये सब बूम वगैरह ये सब लेके आप नहीं जा सकते।
ममता बनर्जी के घर के ठीक पीछे मूर्तिकारों की एक बस्ती है। दोपहर का वक्त है और रेडियो पर फिल्मी नगमों के साथ आराम का भी वक्त हो चला है। इन मूर्तिकारों में से एक हैं बलाई पाल।
पुराना गाना ही अच्छा लगता है।
अब ममता दी क्या लग रहा है आपको, कोई टक्कर है किसी से?
ना असल में तो जोट जो है ना उसका साथ टक्कर होगा।
लेकिन टक्कर होगा या नहीं होगा?
टक्कर होगा एक तो जीतेगा वही।
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 6 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और ये एक लंबा वक्फा है मगर हर चरण के मतदान के बाद संघर्ष और भी ज्यादा मजेदार होता चला जा रहा है और सघन भी। मगर चुनावी तापमान, तपती हुई धूप और उमस के बावजूद लोगों को अपने उन लोक गीतों में ही कुछ राहत का एहसास होता है जो उनकी मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक बिखेरते हैं। सलमान रावी, BBC, 24 परगना, पश्चिम बंगाल।
सलमान रावी की चुनावी डायरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा अपने ईमेल और अपनी चिट्ठियों के माध्यम से। और अब कार्यक्रम में समय है ये जान लेने का कि आज अखबारों में क्या कुछ छपा है। हरिता अखबारों के साथ मौजूद हैं।
जी अशोक जी, अखबारों में सबसे ज़्यादा आज छाई हुई है एक तो उत्तराखंड पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो खबरें हैं और दूसरा जो
अगस्ता
है
अगस्ता वेस्टलैंड
हर अखबार की हेडलाइन है ये। इंडियन एक्सप्रेस से शुरुआत करते हैं, अंग्रेजी अखबार, इससे लिखा है
मजे की बात ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं।
दोनों हमलावर हैं और सरकार ने कहा है कि रिश्वत देने वाले का तो पता चल गया है, तो रिश्वत ली किसने ये भी पता लगा दिया जाएगा।
और कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार कहा है कि अगर आप 2 साल से सरकार में हैं तो आपने जांच क्यों नहीं कराई,
तो उन्होंने कहा मैं किसी से डरती नहीं हूँ, आप इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं डरती नहीं हूँ।
दोनों पक्ष हमला बने कुल मिलाकर।
इसके अलावा एक और चीज इसमें जानने वाली है कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई ने कहा है कि हमने देश में तो जांच पूरी कर ली है, लेकिन 11 देशों में बाहर विदेश में जो जांच के लिए सवाल पूछे गए उन जवाबों का इंतजार
सरकार
हो रहा है।
शायद ये भी कह रही है कि कुछ दस्तावेज इटालियन भाषा में उनका अनुवाद का काम
अनुवाद भी काम होने वाला है। तो ये खबर हम अगस्ता वेस्टलैंड से देख रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़बर जिसका मैं अभी जिक्र करना चाहती हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये खबर छापी है। एक रिपोर्ट है, महाराष्ट्र में पारवार नदी पूरी तरह से सूख चुकी है और ये एक तरह से कब्रिस्तान की तरह हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों के कंकाल अवशेष मिल रहे हैं और लोग टैंकरों से पानी ला रहे हैं तब यहाँ पर इनको बहाया जा पा रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट है और इसमें ये कहा गया है कि इस इलाके में 65 किसानों ने आत्महत्या कर ली है अप्रैल के 3 हफ्तों में।
हालात बहुत ही चिंताजनक
है, सूखा से पीड़ित है। अमर उजाला की एक मुख्य खबर है, कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट इसी सत्र से शुरू होगा। केंद्र सरकार और MCI ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि वो कराने के लिए तैयार हैं इसे।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों की जानकारी के लिए हरिता कांडपाल। और अब बात करते हैं खेलों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में कल IPL 9 के मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स के क्रिस मॉरिस ने खेली एक धमाकेदार पारी, लेकिन अंतिम ओवरों में प्रवीण कुमार और ड्वेन ब्रावो ने दिलाई गुजरात लायंस को 1 रन से शानदार जीत। दिल्ली के सामने 173 रनों का लक्ष्य था, लेकिन गुजरात लायंस के धवल कुलकर्णी ने दिल्ली के पहले 3 बल्लेबाजों को 16 रन पर ही आउट कर दिया। फिर क्रिस मॉरिस ने उसके बाद एक धमाकेदार पारी खेली, 32 गेंदों में उन्होंने नाबाद 82 रन बनाए, लेकिन 19 ओवर में प्रवीण कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी की और मैच को गुजरात लायंस ने 1 रन से जीत लिया। वहीं गुजरात लायंस के लिए सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम और ड्वेन स्मिथ ने जबरदस्त शुरुआत दी। गुजरात ने पहले 9 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 100 रन बनाए और ब्रेंडन मैकलम ने 27 गेंदों में 8 शतक जड़ा, लेकिन फिर इमरान ताहिर ने 112 रन की साझेदारी को तोड़ा और स्मिथ को 53 रन पर आउट कर दिया। अगले ही ओवर में क्रिस मॉरिस ने ब्रेंडन मैकलम को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान सुरेश रायना भी आते ही चलते बने और क्रिस मॉरिस को दूसरी सफलता मिली। विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना पाई गुजरात लायंस। वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन ने बताया कि कल का मैच एक जबरदस्त मैच था, लेकिन तारीफ करनी होगी प्रवीण कुमार की।
देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी मैचेस ये है जो T20 को इतना लोकप्रिय बनाती है और खासकर के IPL में अगर ऐसी मैचेस होती है तो फिर और उत्साह बढ़ जाता है दर्शकों का। लास्ट बॉल तक मैच जो है जिंदा थी और यहाँ पर मैं दूंगा श्रेय दोनों ही क्रिस मॉरिस को जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की, लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी की डेथ ओवर में, खास करके प्रवीण कुमार जब ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें आखिरी ओवर ना मिले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने आखिरी गेंदबाजी की जो एक बताता है कि अगर आपके पास टैलेंट हो और एक्सपीरियंस हो तो बहुत काम आता है टीम के लिए।
वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला आज वानखेड़े स्टेडियम में गत विजेता मुंबई इंडियंस से होगा।
और इसी के साथ हम कार्यक्रम के समापन की तरफ आप पहुंचे हैं, तो सबसे इससे पहले कि आपसे विदा लें सुनिए मुख्य समाचार।
BBC समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विदेश नीति लोगों के सामने रखी। ट्रंप ने अमेरिका की विदेश नीति में कई बदलावों की बात कही। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी टेड क्रूज ने कहा है कि अगर उन्हें उम्मीदवार चुना जाता है तो कार्ली फियोरिना उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई जाएंगी। सीरिया के अलेप्पो शहर से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक सरकार समर्थित सुरक्षा बलों के हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। इराकी सरकार ने अल जजीरा चैनल से बगदाद में अपना ब्यूरो बंद करने को कहा है। अल जजीरा समूह के पत्रकारों को इराक से रिपोर्टें भेजने पर रोक लगा दी गई है। यूक्रेन और रूस के बीच मिलोवो सीमा पर तनाव की खबरें हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि यूक्रेन की पायलट नादिया सावाचेंको की बहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत में अभी के लिए बस इतना ही। ठीक 1 घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा विश्व भारती और आपको खास तौर से सुनवाएंगे दुनिया जहान, बताएंगे कि बांग्लादेश में क्यों एक के बाद एक ब्लॉगरों की हो रही है हत्या। तब तक दीजिए अनुमति अशोक कुमार को। नमस्कार।